मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। कुछ समय पहले मुझे कर्नाटका के बाल मित्रों के साथ परोक्ष संवाद का अवसर मिला। टाइम्स ग्रुप के विजय कर्नाटका अखबार ने बाल दिवस पर एक पहल की, जिसमें उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि विदेश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, और फिर उन्होंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड पत्रों को छापा। मैंने उन पत्रों को पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये नन्हे मुन्ने बालक भी देश की समस्याओं से परिचित हैं, देश में चल रही चर्चाओं से भी परिचित हैं। कई विषयों पर इन बच्चों ने लिखा। उत्तर कन्नड़ की कीर्ति हेगड़े ने डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी योजना की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल बच्चे क्लासरूम रीडिंग करना पसंद नहीं करते, उन्हें प्रकृति के बारे में जानना अच्छा लगता है, और अगर हम बच्चों को प्रकृति की जानकारियाँ देंगे तो शायद पर्यावरण की रक्षा में वो आगे चल कर पे काम आ सकते हैं। लक्ष्मेश्वरा से रीड़ा नदाफ, उस बच्चे ने लिखा है कि वो एक फौजी की बेटी है और उन्हें इस बात का गर्व है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको फौजी पे गर्व न हो, और आप तो फौजी की बेटी हो, आपको गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। कलबुर्गी से इरफाना बेगम, उन्होंने लिखा है कि उनका स्कूल उनके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से उन्हें घर से जल्दी निकलना पड़ता है और घर वापस आने में भी बहुत देर रात हो जाती है। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ समय भी नहीं बिता पाती हूँ, और उन्होंने सुझाव दिया है कि नज़दीक में कोई स्कूल होना चाहिए। लेकिन देशवासियों, मुझे अच्छा लगा कि एक अखबार ने इनिशिएटिव लिया और मुझ तक एक पत्र पहुँचे और मुझे उस पत्रों को पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव था। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 26/11 है। 26 नवंबर यह हमारा संविधान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और इसलिए तो हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। आज का दिन संविधान सभा के सदस्यों के स्मरण करने का दिन है। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 3 वर्षों तक परिश्रम किया, और जो भी उस डिबेट को पढ़ता है, हमें गर्व होता है कि राष्ट्र को समर्पित जीवन की सोच क्या होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि विविधताओं से भरे अपने देश का संविधान बनाने के लिए उन्होंने कितना कठोर परिश्रम किया होगा, सूझबूझ दूरदर्शिता के दर्शन कराए होंगे, और वह भी उस समय जब देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो रहा था। इसी संविधान के प्रकाश में संविधान निर्माता उन महापुरुषों के विचारों के प्रकाश में नया भारत बनाना, ये हम सबका दायित्व है। हमारा संविधान बहुत व्यापक है। शायद जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, प्रकृति का कोई ऐसा विषय नहीं है जो उससे अछूता रह गया हो। सभी के लिए समानता और सभी के प्रति संवेदनशीलता हमारे संविधान की पहचान है। यह हर नागरिक, गरीब हो या दलित, पिछड़ा हो या वंचित, आदिवासी, महिला, सभी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है और उनके हितों को सुरक्षित रखता है। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें। नागरिक हो या प्रशासक, संविधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ें। किसी को किसी भी तरह से क्षति न पहुंचे, यही तो संविधान का संदेश है। आज संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद आना तो बहुत स्वाभाविक है। इस संविधान सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर 17 अलग अलग समितियों का गठन हुआ था। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितियों में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वाह कर रहे थे। आज हम भारत के जिस संविधान पर गौरव का अनुभव करते हैं, उसके निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर के कुशल नेतृत्व की अमिट छाप है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समाज के हर तबके का कल्याण हो। 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम हमेशा की तरह उन्हें स्मरण और नमन करते हैं। देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में बाबा साहेब का योगदान अविस्मरणीय है। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। किसान पुत्र से देश के लौह पुरुष बने सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का बहुत असाधारण कार्य किया था। सरदार साहब भी संविधान सभा के सदस्य रहे थे। वे मूलभूत अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर बनी एडवाइजरी कमेटी के भी अध्यक्ष थे। 26/11 हमारा संविधान दिवस है, लेकिन यह देश कैसे भूल सकता है कि 9 साल पहले 26/11 को आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला बोल दिया था। देश उन बहादुर नागरिकों, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, उन हर किसी का स्मरण करता है, उनको नमन करता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह देश कभी उनके बलिदान को नहीं भूल सकता। आतंकवाद आज विश्व के हर भूभाग में और एक प्रकार से प्रतिदिन होने वाली घटना का एक अति भयंकर रूप बन गई है। हम भारत में तो गत 40 वर्ष से आतंकवाद के कारण बहुत कुछ झेल रहे हैं। हजारों हमारे निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन कुछ वर्ष पहले भारत जब दुनिया के सामने आतंकवाद की चर्चा करता था, आतंकवाद से भयंकर संकट की चर्चा करता था, तो दुनिया के बहुत लोग थे जो इसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब आज आतंकवाद उनके अपने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है, और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, यही तो ये धरती है जिसने अहिंसा और प्रेम का संदेश दुनिया को दिया है। आतंकवाद, उग्रवाद हमारी सामाजिक संरचना को कमजोर कर उन्हें छिन्न भिन्न करने का नापाक प्रयास करते हैं, और इसलिए मानवतावादी शक्तियों का अधिक जागरूक होना समय की मांग है। मेरे प्यारे देशवासियों, 4 दिसंबर को हम सब नेवी डे, नौसेना दिवस मनाएंगे। भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, चाहे वह सिंधु हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो। हमारी नदियाँ और समुद्र आर्थिक और सामरिक, स्ट्रैटेजिक दोनों पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है। वे पूरे विश्व के लिए हमारा गेटवे है। इस देश का, हमारी इस भूमि का महासागरों के साथ अटूट संबंध रहा है, और जब हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो 800-900 साल पहले चौल वंश के समय चोल नेवी को सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक माना जाता था। चोल साम्राज्य के विस्तार में उसे अपने समय का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा था। चोल नेवी की मुहिम, खोज यात्राओं के ढेरों उदाहरण का संगम साहित्य में आज भी उपलब्ध है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद युद्ध पोतों पर महिलाओं को अलाउ किया था, लेकिन चोल नेवी में, और वो भी 800-900 साल पहले, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और यहाँ तक कि महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शिप बिल्डिंग, जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत ही समृद्ध ज्ञान था। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और नौसेना के उनके सामर्थ्य को कौन भूल सकता है। कोंकण तट क्षेत्र, जहाँ समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिवाजी महाराज के राज्य के अंतर्गत आता था। शिवाजी महाराज से जुड़े कई किले जैसे सिंधुदुर्ग, मुरुड़ जंजीरा, सुवर्णदुर्ग आदि या तो समुद्र तटों पर स्थित थे या तो समुद्र से घिरे हुए थे। इन किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठा नौसेना करती थी। मराठा नेवी में बड़े बड़े जहाजों और छोटी छोटी नौकाओं का कॉम्बिनेशन था। उनके नौसैनिक किसी भी दुश्मन पर हमला करने और उनसे बचाव करने में अत्यंत कुशल थे। और हम मराठा नेवी की चर्चा करें और कान्होजी आंग्रे को याद न करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मराठा नौसेना को एक नए स्तर पर पहुंचाया और कई स्थानों पर मराठा नौसैनिकों के अड्डे स्थापित किए। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। इस वर्ष जून महीने में बांग्लादेश और म्यांमार में साइक्लोन मोरा का संकट आया था, तब हमारी नौसेना की शिप INS सुमित्रा ने तत्काल रेस्क्यू के लिए मदद की थी और कई मछुआरों को पानी से बाहर सुरक्षित बचाकर बांग्लादेश को सौंपा था। इस वर्ष मई जून में जब श्रीलंका में बाढ़ का भयंकर संकट आया था, तब हमारी नौसेना के 3 जहाजों ने तत्कालिक वहां पहुंच करके वहां की सरकार और वहां की जनता को मदद पहुंचाई थी। बांग्लादेश में सितंबर महीने में रोहिंग्या के मामले में हमारी नौसेना की शिप INS गढ़ियाल ने मानवीय सहायता पहुंचाई थी। जून महीने में पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने हमें SOS संदेश दिया था और उनके फिशिंग बोट के मछुआरों को बचाने में हमारी नौसेना ने सहायता की थी। 21 नवंबर को पर्शियन गल्फ में एक मर्चेंट वेसल में पायरेसी की घटना में भी हमारी नौसेना जहाज INS त्रिखंड सहायता के लिए पहुंच गया था। फिजी तक आरोग्य सेवाएं पहुंचानी हो, तत्कालीन राहत पहुंचानी हो, पड़ोसी देशों को संकट के समय मानवीय मदद पहुंचानी हो, हमारी नौसेना हमेशा गौरवपूर्ण कार्य करती रही है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुखचैन की जिंदगी जी सकें, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। हर वर्ष 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाता है। यह देश के आर्म फोर्सेस के प्रति गर्व करने और सम्मान प्रकट करने का दिन है। मुझे खुशी है कि इस बार रक्षा मंत्रालय ने 1 से 7 दिसंबर तक अभियान चलाने का निर्णय किया है। देश के नागरिकों के पास पहुंच करके आर्म फोर्सेस के संबंध में लोगों को जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, पूरे सप्ताह भर बच्चे बड़े हर कोई फ्लैग लगाएं, देश में सेना के प्रति सम्मान का एक आंदोलन खड़ा हो जाए। इस अवसर पर हम आर्म फोर्सेस फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आसपास में, अपनी जान पहचान में जो आर्म फोर्सेस से जुड़े हैं, उनके एक्सपीरियंसिस को, उनके करेजियस एक्ट को, उससे जुड़े वीडियोस और पिक्चर्स #ArmedForcesFlagDay पर पोस्ट कर सकते हैं। स्कूलों में, कॉलेज में फौज के लोगों को बुला करके उनसे फौज के विषय में जानकारियां ले सकते हैं। हमारी नई पीढ़ी को फौज के संबंध में जानकारियां पाने का एक अच्छा अवसर बन सकता है। यह अवसर हमारे आर्म फोर्सेस के सभी जवानों के कल्याण के लिए धनराशि संग्रह करने का होता है। यह राशि सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारजनों को, घायल सैनिकों के कल्याण के लिए उनके पुनर्वास में खर्च की जाती है। आर्थिक योगदान देने के लिए आप विभिन्न भुगतान के बारे में जानकारी ksb.gov.in से ले सकते हैं। आप इसके लिए कैशलेस पेमेंट भी कर सकते हैं। आइए इस अवसर पर हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़े, हम भी उनके कल्याण की दिशा में अपना योगदान दें। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे है। मैं अपने किसान भाई बहनों से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मिट्टी। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इस मिट्टी से ही तो जुड़ा हुआ है। एक तरह से पूरा फूड चेन मिट्टी सॉइल से जुड़ा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, अगर इस विश्व में कहीं भी उपजाऊ मिट्टी न हो तो क्या होगा? सोच करके भी डर लगता है। न मिट्टी होगी, न पेड़ पौधे उगेंगे, मानव जीवन कहाँ संभव होगा, जीव जंतु कहाँ संभव होगा। हमारी संस्कृति में इस पर बहुत पहले चिंता कर ली गई और यही कारण है कि हम मिट्टी के महत्व को लेकर प्राचीन समय से जागरूक रहे हैं। हमारी संस्कृति में एक और खेतों के प्रति, मिट्टी के प्रति भक्ति और आभार भाव लोगों में बना रहे ऐसा सहज प्रयास है, तो दूसरी ओर ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां जीवन का हिस्सा रही कि इस मिट्टी का पोषण होता रहा। इस देश के किसान के जीवन में दोनों ही बातों का महत्व रहा है, अपनी मिट्टी के प्रति भक्ति और साथ साथ वैज्ञानिक रूप से मिट्टी को सहजना संवारना। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारे देश के किसान परंपरा से भी जुड़े रहते हैं और आधुनिक विज्ञान की तरफ भी रुचि रखते हैं, प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के टोहू गांव, भोरंज ब्लॉक और वहां के किसानों के बारे में मैंने सुना था। यहां किसान पहले असंतुलित ढंग से रासायनिक उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे थे और जिसके कारण उस धरती की सेहत बिगड़ती गई, उपज कम होती गई और उपज कम होने से आय भी कम हो गई और मिट्टी की भी उत्पादकता धीरे 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 घटती जा रही थी। गांव के कुछ जागरूक किसानों ने इस परिस्थिति की गंभीरता को समझा और इसके बाद गांव के किसानों ने समय पर अपनी मिट्टी की जांच कराई और जितने फर्टिलाइजर, उर्वरकों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जैविक खाद का उपयोग करने के लिए उन्हें कहा गया, उन्होंने उस एडवाइस को माना, उस सलाह को माना। और आप ये परिणाम सुनकर के चौंक जाएंगे कि सॉइल हेल्थ के द्वारा किसानों को जो जानकारी मिली और उससे उनको जो मार्गदर्शन मिला, उसको लागू करने का परिणाम क्या आया। रबी 2016-17 में गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई और आय में भी प्रति एकड़ 4,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक की वृद्धि हुई। इसके साथ साथ मिट्टी की क्वालिटी में भी सुधार आया, फर्टिलाइजर के उपयोग कम होने के कारण आर्थिक बचत भी हुई। मुझे यह देखकर काफ़ी खुशी है कि मेरे किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती माँ का ख्याल रखना होगा और अगर धरती माँ का हम ख्याल रखेंगे तो धरती माँ हम सबका ख्याल रखेगी। देश भर में हमारे किसानों ने 10 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लिए हैं ताकि वे अपनी मिट्टी को बेहतर ढंग से समझ सकें और उस अनुरूप फसल भी बो सकें। हम धरती माता की भक्ति करते हैं पर धरती माता को यूरिया जैसे उर्वरक, फर्टिलाइजर से धरती माँ के स्वास्थ्य को कितनी हानि होती है, कभी सोचा है? हर प्रकार के वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध हो चुका है कि धरती माँ को आवश्यकता से अधिक यूरिया के उपयोग से गंभीर नुकसान पहुंचता है। किसान तो धरती का पुत्र है, किसान धरती माँ को बीमार कैसे देख सकता है? समय की मांग है उसे, इस माँ बेटे के संबंधों को फिर से एक बार जागृत करने की। क्या हमारे किसान, हमारे धरती के पुत्र, हमारे धरती के संतान ये संकल्प कर सकते हैं क्या कि आज वो अपने खेत में जितना यूरिया का उपयोग करता है, 2022 जब आज़ादी के 75 साल होंगे, आधा उपयोग बंद कर देगा? एक बार अगर माँ धरती का पुत्र, मेरा किसान भाई, ये संकल्प कर लें तो देखिए धरती माँ की सेहत सुधर जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, किसान की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज अब हम सब लोग अनुभव करने लगे हैं। वो भी एक वक्त था कि दिवाली के पहले सर्दी आ जाती थी, अब दिसंबर दस्तक दे रहा है और सर्दी बहुत धीरे 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 कदम बढ़ा रही है। लेकिन जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती है, हम सबका अनुभव है, रजाई से बाहर निकलना जरा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे मौसम में भी सतत जागृत रहने वाले लोग कैसा परिणाम लाते हैं, और ये उदाहरण हम सबके लिए प्रेरणा देते हैं। आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश के एक 8 वर्षीय दिव्यांग बालक तुषार, उसने अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया। इतने व्यापक स्तर का काम और इतना छोटा बालक, लेकिन जज्बा और संकल्प उससे कई गुना बड़े थे, बृहत थे और ताकतवर थे। 8 वर्षीय बालक बोल नहीं सकता, लेकिन उसने सीटू को अपना हथियार बनाया और सुबह 5 बजे उठकर अपने गांव में घर घर जाकर लोगों को सीटी से जगा करके हाथ के एक्शन से खुले में शौच ना करने के लिए शिक्षा देने लगा। हर दिन 30-40 घरों में जाकर के स्वच्छता के सिख देने वाले इस बालक की बदौलत कुम्हारी गांव खुले में शौच से मुक्त हो गया। स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में उस नन्हे बालक तुषार ने प्रेरक काम किया। यह दिखाता है कि स्वच्छता की न कोई उम्र होती है, न कोई सीमा। बच्चा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, स्वच्छता सभी के लिए जरूरी है और स्वच्छता के लिए हर किसी को कुछ न कुछ करने की भी जरूरत है। हमारे दिव्यांग भाई बहन दृढ़ निश्चयी है, सामर्थ्यवान है, साहसिक और संकल्पवान है। हर पल हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज वे हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, कोई कंपटीशन का हो, कोई सामाजिक पहल हो, हमारे दिव्यांग जन भी किसी से पीछे नहीं रहते हैं। आप सबको याद होगा, हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते थे और ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी चैंपियन बने थे। देश भर में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। पिछले दिनों उदयपुर में 17वीं नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हमारे युवा दिव्यांग भाई बहनों ने इसमें भाग लिया और अपने कौशल का परिचय दिया। उन्हीं में से एक है गुजरात के 19 साल के जिगर ठक्कर। उनके शरीर के 80% हिस्से में मांसपेशी नहीं है, लेकिन उनका साहस, संकल्प और उनकी मेहनत को देखिए। नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में 19 साल के जिगर ठक्कर, जिसके शरीर में 80% मांसपेशी न हो और 11 मेडल जीत जाए, 70वीं नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में भी उन्होंने गोल्ड जीता। उनके इसी कौशल का परिणाम है कि वे भारत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 2020 पैरा ओलंपिक के लिए चुने गए 32 पैरा तैराकों में से एक हैं, जिन्हें गुजरात के गांधीनगर में सेंटर फॉर एक्सलेंसीज में ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं युवा जिगर ठक्कर के जज्बे को सलाम करता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि देश का हर एक व्यक्ति सशक्त हो, एक समावेशी समाज का निर्माण हो, सम और मम के भाव से समाज में समरसता बढ़े और सब एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। कुछ दिन बाद ईदे मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि ईद का यह पर्व समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ाने के लिए हम सबको नई प्रेरणा दे, नई ऊर्जा दे, नया संकल्प करने का सामर्थ्य दे।
नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं कानपुर से नीरजा सिंह बोल रही हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे साल में जो आपने अपनी मन की बात में जो बातें कही हैं, उनमें से जो 10 सबसे अच्छी बातें हैं उनको आप हमसे दोबारा शेयर करें, जिससे कि हम सबको पुनः उन बातों का स्मरण हो और हमें कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।
आपकी बात सही है, 2017 पूर्ण हो रहा है, 2018 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन आपने अच्छा सुझाव दिया है। लेकिन आप ही की बात से मुझे कुछ और उसमें जोड़ने का और परिवर्तन का मन करता है। और हमारे यहाँ तो गांव के अंदर जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, गांव के जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े हमेशा कहा करते हैं, दुख को भूलो और सुख को भूलने मत दो। दुख को भूलें, सुख को भूलने ना दें। मुझे लगता है कि इस बात को हमने प्रचारित करना चाहिए। हम भी 2018 में शुभ का स्मरण करते हुए, शुभ का संकल्प करते हुए प्रवेश करें। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तो शायद दुनिया भर में होता है कि वर्ष के अंत में जब लेखा जोखा करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, मंथन करते हैं और अगले वर्ष के लिए योजनाएं बनाते हैं। हमारे यहाँ मीडिया में तो बीते हुए साल की कई रोचक घटनाओं को फिर से एक बार पुनः स्मरण कराने का प्रयास होता है। उसमें पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 2018 में हम प्रवेश अच्छी चीज़ों को याद करके करें, अच्छा करने के लिए करें? मैं आप सबको एक सुझाव देता हूँ कि आप सब 5-10 अच्छी पॉजिटिव बातें जो आपने सुनी हो, आपने देखी हो, आपने अनुभव की हो, और जिसको अगर और लोग जाने तो उनको भी एक शुभ भाव पैदा हो, क्या आप इसमें योगदान दे सकते हैं? क्या इस बार हम इस वर्ष के अपने जीवन के 5 पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? चाहे वो फोटो के माध्यम से हो, छोटी सी कोई कहानी के रूप में हो, स्टोरी के रूप में हो, छोटे से वीडियो के रूप में हो। मैं निमंत्रित करता हूँ कि 2018 का स्वागत हमें एक शुभ वातावरण में करना है, शुभ स्मृतियों के साथ करना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है, पॉजिटिव बातों को याद करके करना है। आइए नरेंद्र मोदी ऐप पर, माई गॉव पर या सोशल मीडिया पर हैशटैग पॉजिटिव इंडिया के साथ सकारात्मक बातों को शेयर करें, औरों को प्रेरणा देने वाली घटनाओं का स्मरण करें। अच्छी बातों को याद करेंगे तो अच्छा करने का मूड बनेगा। अच्छी चीजों अच्छा करने के लिए ऊर्जा दे देती है। शुभ भाव शुभ संकल्प का कारण बनता है। शुभ संकल्प शुभ परिणाम के लिए आगे ले जाता है। आइए इस बार प्रयास करें, हैशटैग पॉजिटिव इंडिया। देखिए हम सब मिलकर के क्या जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करके आने वाले साल का स्वागत करेंगे। इस कलेक्टिव मोमेंटम की ताकत और इसका इम्पैक्ट हम सब मिलकर के देखेंगे। और मैं जरूर अगली मन की बात में आपकी इन हैशटैग पॉजिटिव इंडिया पर आई हुई चीजों को देशवासियों के बीच पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने अगली मन की बात के लिए फिर आपके बीच आऊंगा, ढेर सारी बातें करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।